بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کے سورہ زحاق کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قاری ہیں ہاشم روغنی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیاوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگری آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، اور آپ کو مارگ سے دور پایا تو گنتویہ تک نہیں پہنچایا؟ और आपको निर्धन पाया तो समृद्ध नहीं कर दिया? अतः अनाथ पर क्रोध न कीजिए और मांगने वाले को न झिड़किए, तथा अपने पालनहार की अनुकंपा का वर्णन करते रहिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, शहरीवर की 13, सफर की 18 और सितंबर की 4 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे विश्व दर्पण और अंतिम कार्यक्रम होगा वहाबियत और वास्तविकता। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। अरबईन हुसैनी के लिए इराक जाने वाले 5 ईरानी जायरीन की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। आतंकवादी अरबईन के मौके पर इराक में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया है। पाकिस्तान के पर्वतीय सीमावर्ती इलाके गिलगित बलूचिस्तान के विभिन्न शहरों में धार्मिक समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
अरबईन हुसैनी के अवसर पर जियारत के लिए इराक जाने वाले 5 ईरानी जायरीन की एक दुर्घटना के कारण जान चली गई है। सोमवार को इराक के मीसान प्रांत के अल अमारा इलाके में एक क्रॉसिंग पर एक टैक्सी और एक यात्री बस के बीच गंभीर टक्कर में 8 तीर्थ यात्री घायल भी हुए हैं। इराक स्थित ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अरबईन मुख्यालय ने घोषणा की है कि घायलों को तुरंत ईरान स्थानांतरित कर दिया गया है। मीसान प्रांत इराक के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी सीमा ईरान से लगती है। शुक्रवार की रात काजेमैन सामर्रा मार्ग में 2 वैन आपस में टकराकर पलट गईं, जिससे 19 ईरानी और अफगान तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। पिछले सोमवार को 32 ईरानी तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस कूद बादरा रोड पर पलट गई थी, जिसमें 4 ईरानी तीर्थयात्रियों की जान चली गई और एक अन्य घायल हो गया था। एक दूसरी दुर्घटना में इराक के वासित प्रांत में ईरानी तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक वैन में आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 7 अन्य घायल हो गए। पिछले कुछ दिनों के दौरान इराक में सड़क दुर्घटनाओं में कई ईरानी और गैर ईरानी जायरीन की मौत हुई है।
अरबईन या इमाम हुसैन के चेहलों के निकट आने के साथ ही कुछ संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के दृष्टिगत इराक के स्वयंसेवी बल हश्दुश्शाबी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। हश्दुश्शाबी के कमांडर फाजिल अल ईसावी ने बताया है कि इराक से ملنے والی سیریا کی سیما کے نکٹ کچھ سندگدھ آتنکی گتیویدھیوں کے کارن سوئم سوی بل کے سدسیوں کو پوری طرح سے سترک رہنے کو کہہ دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سندگدھ آتنکی گتیویدھیوں کے کارن داعش سے آتنکی پشچمی عراق سے دیش میں پرویشت ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. حشد الشعبی کے کمانڈر کے انوسار فلوجہ سے لے کر کربلا پرانت تک پوری طرح سے سرکشا بڑھا دی گئی ہے.
ایران کے راشپتی نے اپنیویش واد اور آتنکواد کے خلاف افریقی دیشوں کے پرتیرودھ کی پرشنسا کی ہے. ایران کے راشپتی سید ابراہیم رئیسی نے اپنیویش واد کے خلاف افریقی دیشوں کے پرتیرودھ کو ان کی جاگرکتا، سترکتا اور آج کی ضرورتوں کی سٹیک پہچان کا سنکیت بتایا ہے. ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی نے ایران اور برکینا فاسو کے بیچ آرتھک سہیوگ کے لیے سنیکت آیوگ کو آپسی کشمتاؤں کے آدان پردان کو سویدھا جنک بنانے اور اس میں تیزی لانے اور سہیوگ کا وستار کرنے میں پربھاوی بتایا. برکینا فاسو کی ودیش منتری اولیویا روامبا نے اس ملاقات میں کہا کہ برکینا فاسو سہیت افریقی دیش اہنکار اور ورچسو کے خلاف اسلامی کرانتی کے پرتیرودھ سے پریرت ہیں.
نائجیریا کی اسلامی آندولن کے نیتا شیخ زکزکی کے پرتنیدھی کا کہنا ہے کہ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے پرتیرودھ کو پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے. ایران پریس کے انوسار شیخ آدم سوہو احمد نے پویتر نگر کربلا میں یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ہی سوئم ہی پرتیرودھ کی پرکریا ہیں. شیخ احمد کا کہنا تھا کہ پرتیرودھ کی پرکریا ہی دنیا کے آزاد لوگوں کے لیے ورچسو وادیوں سے مقابلے کا ایک ماتر مارگ ہے. آدم سوہو احمد نے کہا کہ سورگی امام خمینی کی ہی بھاتی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ہی نے بھی پرتیرودھ کی بھاونا کو ہر اور پھیلایا ہے. انہوں نے کہا کہ نائجیریا کے اسلامی آندولن کے نیتا شیخ زکزکی نے بھی پرتیرودھ کو اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا سے ہی سیکھا ہے. کشما کیجیے گا. شیخ زکزکی کے پرتنیدھی نے امام حسین علیہ السلام کے چہلم یا اربعین کو پورے وشو کے سوتنترتا پریمیوں کی ایکجٹتا کا پرتیک بتایا.
بھارتیہ وایو سینا نے چین اور پاکستان دونوں کی سیماؤں کے ساتھ اتری کھیتر میں بڑے پیمانے پر یدھابیاس شروع کیا ہے. بھارتیہ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ ابھیاس سوموار کو نئی دلی میں آیوجت ہونے والی G20 کی بیٹھک سے ٹھیک پہلے شروع کیا گیا ہے. بھارتیہ وایو سینا یہ یدھابیاس ایسے سمے میں کر رہی ہے جبکہ G20 شکھر سمیلن کے لیے نئی دلی کے ہوائی کھیتر کی پوری سرکشا کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. راجدھانی اور اس کے آس پاس کے کھیتروں میں رکشاتمک اور آکرامک اپکرن تعینات کر دیے گئے ہیں. اس یدھ ابھیاس کو ترشول نام دیا گیا ہے. کچھ دن پہلے ہی اس کی جانکاری دیتے ہوئے بھارتیہ وایو سینا کے ادھیکاری نے کہا تھا کہ اس میگا ابھیاس میں رافائل، میراج 2000 اور سکھوئی 30 جیسے لڑاکو ویمان بھاگ لیں گے. ساتھ ہی لڑاکو ویمانوں کے سبھی پرمکھ بیڑے چنوک اور اپاچے سہیت بھاری لفٹ پریوہن ویمان اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ابھیاس میں بھاگ لیں گے. یہ این آئی نے بتایا کہ گروڑ وشیش بل بھی ابھیاس کا حصہ ہے جہاں وایو شکتی کے سبھی تتووں کا ابھیاس کیا جانے کی سمبھاونا ہے. لداخ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور پنجاب سہیت اتری کھیتر میں 4 سے 14 ستمبر تک یہ یدھ ابھیاس جاری رہے گا.
پاکستان کے پروتیہ سیماورتی علاقے گلگت بلتستان کے وبھن شہروں میں دھارمک سموہوں دوارا ورودھ پردرشنوں کا سلسلہ جاری ہے. شیعہ مسلم بہل اس علاقے میں کیے کچھ دھارمک نیتاؤں پر سامپردائکتا کو بڑھاوا دینے کے آروپوں کے بعد دو سمپردائے کے لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں پردرشن کر رہے ہیں. یہاں اسکدرو شہر کے ایک دھارمک نیتا کے خلاف دیامیر کے شہر چلاس میں پہلے مقدمہ درج کرنے کی مانگ کو لے کر اور پھر گرفتاری کے لیے پردرشن ہوا اور راشٹریہ راج مارگ کو بھی بند کر دیا گیا. وہیں پریٹن کے لیے مشہور اسکدرو میں پردرشنکاریوں نے مانگ کی اگر چلاس کی سڑک اسکدرو کے لوگوں کے لیے سرکشت نہیں ہے تو کرگل روڈ کو ہمارے لیے کھول دیا جانا چاہیے. گلگت بلتستان سرکار نے کسی بھی اپریہ گھٹنا سے بچنے کے لیے پورے پرانت میں دھارا 144 لاگو کر دی ہے. ستھانیہ پرشاسن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کے افسر پر قانون اور ویوستھا بنائے رکھنے کے لیے پاکستانی سینا اور سشستر بلوں کو تعینات کیا گیا ہے. گلگت میں مولانا قاضی نثار احمد اور اسکدرو میں علامہ آغا باقر الحسینی کے خلاف معاملے درج کیے گئے ہیں۔
یوکرین یدھ کا نیتوتو کرنے والے اس دیش کے رکشا منتری کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یوکرین کے راشٹرپتی نے رویوار کی رات اس دیش کے رکشا منتری ریجنی ووو کو برخاست کر دیا۔ ایران پریس کے انوسار ولودیمیر زیلنسکی نے اولوکسی ریجنیکوو کو ان کے پد سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سنسد سے مانگ کریں گے کہ وہ رستم اومیروو کو یوکرین کے رکشا منتری کے پد کے لیے چین کریں۔ اولیکسی ریجنیکوو کو اپدست کرنے کا کارن بتاتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ لمبے سمے سے چل رہے یدھ میں دیش کی سینا کو اومیروو جیسے ویکتی کی آوشیکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فروری 2022 سے آرمبھ ہونے والے یوکرین یدھ میں یہ بہت ہی مہتوپورن گھٹنا کرم ہے۔
جی 20 کی بیٹھک میں چین کے راشٹرپتی کی انوپستھتی نے بائیڈن کو چنتت کر دیا ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بھارت میں ہونے والے جی 20 شکر سمیلن میں چین کے راشٹرپتی غیر موجودگی سے وہ نراش ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 20 شکر سمیلن کو لے کر میں اتسک ہوں، کنتو یہ سن کر تھوڑا نراش ہوا کہ اس میں شی جن پنگ حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جلد ہی شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ اس بیچ وائٹ ہاؤس کی اور سے گھوشنا کی گئی ہے کہ جی 20 کے شکر سمیلن میں بھاگ لینے کے ادیش سے راشٹرپتی جو بائیڈن 7 ستمبر کو بھارت جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔ یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोतो राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने तेहरान में अपनी महत्वपूर्ण मुलाकात में आपसी संबंधों, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय विषयों पर विस्तार से बातचीत की। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि आज अगर पश्चिम एशिया में इसराइल नाम का कोई अवैध शासन है तो उसके लिए पूरी तरह अमेरिका और ब्रिटेन ही जिम्मेदार हैं। ज़ानवी समाज में पाए जाने वाले आंतरिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان اور ترکی کے ودیش منتری حاکان فیدان نے تہران میں اپنی مہتوپورن ملاقات میں آپسی سمبندھوں، آرتھک سہیوگ اور چھیتریہ وشیوں پر وستار سے بات چیت کی۔ ترکی کے ودیش منتری 3 ستمبر کو تہران پہنچے تھے۔ یہ سفر اس لیے مہتوپورن مانا جا رہا ہے کہ ایران اور ترکی دونوں ہی اسلامی جگت اور پشچم ایشیا کے علاقے کے مہتوپورن دیش ہیں اور دونوں کی سنیکت سیمائیں ہیں۔ ساتھ ہی احمد عباس،
اسلامی گڑراجی ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان اور ترکی کے ودیش منتری حاکان فیدان نے تہران میں اپنی مہتوپورن ملاقات میں آپسی سمبندھوں، آرتھک سہیوگ اور کھیتریہ وشیوں پر وستار سے بات کی۔ ترکی کے ودیش منتری حاکان فیدان 3 ستمبر کو تہران پہنچے تھے۔ یہ سفر اس لیے مہتوپورن مانا جا رہا ہے کہ ایران اور ترکی دونوں ہی اسلامی جگت اور پشچمی ایشیا کے علاقے کے مہتوپورن دیش ہیں اور دونوں کی سنیکت سیمائیں ہیں۔ क्षेत्रीय विषयों और इस्लामी जगत के मुद्दों के बारे में दोनों देशों के दृष्टिकोण का हालात पर गहरा असर होता है। दोनों ही देशों ने हालिया समय में कुछ यूरोपीय देशों में इस्लामोफोबिया की घटनाओं के बारे में बहुत ठोस स्टैंड लिया। इस तरह के ठोस स्टैंड का नतीजा ये निकला कि स्वीडन और डेनमार्क की सरकारों ने जहां कुरान के अपमान की घटनाएं हुई थी इस बारे में गंभीरता से विचार किया और इस घटिया हरकत पर अंकुश लगाने के बारे में सोचा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हालिया कुछ समय में खासतौर पर यूरोप में देखने में आया कि इस्लामी मूल्यों और पवित्र पुस्तक कुरान पर जानबूझकर हमले किए गए। हमने इस बारे में बात की है और OIC के स्तर पर क्या किया जा सकता है इस पर विचार किया। दूसरी बात यह है कि ईरान और तुर्की की कुछ संयुक्त चिंताएं भी हैं। इनमें एक आतंकवाद का विषय है। विदेश मंत्रियों की बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई। तुर्की को आतंकी संगठन PKK को लेकर आपत्ति है तो दूसरी ओर इस्लामी गणराज्य ईरान को उत्तरी इराक में सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर भारी आपत्ति है जो ईरान के हितों को निशाना बनाते हैं। इन विषयों के अलावा दोनों देशों के नेता आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच सालाना आर्थिक लेन देन को 30 अरब यूरो के स्तर तक ले जाना है और हम अभी बीच रास्ते में हैं। हम ये भी चाहते हैं कि दोनों देशों ने व्यापार के लिए फेवरेट नेशन की कैटेगरी जो निर्धारित की है उसे अपडेट किया जाए। ट्रांजिट के मार्गों के बारे में भी दोनों देशों ने बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम समझते हैं कि ट्रांजिट के मार्ग प्रतिस्पर्धा की बुनियाद नहीं बल्कि तेहरान अंकारा सहयोग बढ़ाने के माध्यम है। कॉकेशिया का जियोपॉलिटिकल मुद्दा और आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य का विवाद भी दोनों विदेश मंत्रियों की चर्चा का विषय था। इस्लामी गणराज्य ईरान कह चुका है कि कॉकेशिया के इलाके में किसी भी तरह की जियोपॉलिटिकल तब्दीली को स्वीकार नहीं करेगा और इस स्टैंड पर विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक बार फिर ताकीद की है। उन्होंने कहा कि हम ईरवान और बाकू के बीच बातचीत और समझौते का स्वागत करते हैं और साथ ही इस बात को दोहराते हैं कि इलाके में किसी भी तरह की जियोपॉलिटिकल तब्दीली और ट्रांजिट के पुराने रास्तों को बंद और सीमित करने की कोशिश को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। ये भी तय हुआ कि ईरान तुर्की और अजरबैजान के बीच 3 पक्षीय बैठक में जियोपॉलिटिकल विषय और कॉकेशिया के मुद्दे पर चर्चा होगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि आज अगर पश्चिम एशिया में इसराइल नाम का कोई अवैध शासन है तो उसके लिए पूरी तरह अमेरिका और ब्रिटेन ही जिम्मेदार हैं। हालिया दिनों में इस्लामी गणतंत्र ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों को लेकर समझौता हुआ था। मरिया मेहदादी।
इस बात को दुनिया जानती है कि आज अगर पश्चिम एशिया में इसराइल नाम का कोई अवैध शासन है तो उसके लिए पूरी तरह अमेरिका और ब्रिटेन ही जिम्मेदार हैं। वहीं इस गैर कानूनी शासन का अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी है तो वो ईरान है। इस्लामी गणराज्य ईरान ने हमेशा फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन किया है और फिलिस्तीन की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हर स्थिति में खड़ा रहा है। हालिया दिनों में इस्लामी गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों को लेकर समझौता हुआ था। वहीं इसराइल ने कतर की मध्यस्थता में हुई ईरान अमेरिका समझौते को बदनाम करने की जल्दी की थी। इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली, $10 अरब की ईरानी संपत्ति की रिहाई और देश की परमाणु सुविधाओं में यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को रोकने के लिए तेहरान की प्रतिबद्धता शामिल थी। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस समझौते को क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए ये दावा किया कि ईरान अपनी मुक्त संपत्तियों का उपयोग अपने सहयोगी समूहों की गतिविधियों को गति देने के लिए करेगा। इस समझौते पर नेतन्याहू का हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सामना करने की उनकी रणनीति की विफलता और बाइडेन प्रशासन की स्थिति को प्रभावित करने में उनकी असमर्थता के प्रति उनकी हताशा को दर्शाता है। साथ ही क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान की नीतियों की लगातार होती सराहना से न केवल जायनी प्रधानमंत्री हैरान और परेशान हैं, बल्कि तेहरान की बढ़ती ताकत से नेतन्याहू के आंखों से आंसू तक निकल आए हैं। सूत्रों के हवाले से सामने आई रिपोर्टों में यह बताया गया है कि एक अमरीकी अधिकारी से नेतन्याहू ने ईरान और अमरीका के बीच हुए समझौते को लेकर इतनी नाराजगी जताई कि उनकी आंखों से उनका दर्द झलक आया। यह समझौता न केवल तेल अविव और वाशिंगटन के बीच बढ़ती दूरी को दर्शाता है, बल्कि अमरीका के उन दावों की भी पोल खोलता है कि जिसमें वो तेहरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को तेज करने और सैन्य विकल्प का उपयोग करने की धमकी देता है। साथ ही वाशिंगटन तेहरान के साथ इस तरह का समझौता करके दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि ईरान विश्व की एक बढ़ती हुई ताकत है जो परमाणु टेक्नोलॉजी से संपन्न है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईरान ने संवर्धन रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन दूसरी ओर यह समझौता इस देश को अपना 20% और 60% समृद्ध यूरेनियम रखने की अनुमति देता है। वहीं ईरान और अमरीका के बीच कैदियों की अदला बदली को लेकर हुए समझौते को इसराइली अधिकारी एक ऐसी शुरुआत मान रहे हैं कि जो तेहरान और वाशिंगटन के बीच एक व्यापक परमाणु समझौते के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तेल अविव का मानना है कि अगर अगला चुनाव बाइडेन जीत जाते हैं तो फिर ईरान और अमेरिका के बीच व्यापक समझौते को होने से कोई नहीं रोक सकता है। पूरे मामले को और अधिक जटिल बनाने वाली बात यह है कि यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो चुका है कि नेतन्याहू के इशारे पर इसराइल के कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रखा है उसमें ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करना, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म करना और साइबर हमले करना शामिल है। उसने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को पहले से और अधिक मजबूत किए हैं, बल्कि ये भी दर्शा दिया है कि इसराइल अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। यही कारण है कि अब उसके आकाओं ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही बाइडेन प्रशासन के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमले के संबंध में इसराइल की धमकियां केवल धमकियां ही हैं, क्योंकि तेल अविव के पास जब हिजबुल्ला से टकराने की हिम्मत नहीं है तो ईरान से तो बहुत दूर की बात है।
जानवी समाज में पाए जाने वाले आंतरिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। नेतन्याहू की नीतियों के विरोध में व्यापक जन प्रदर्शन के बाद अब अवैध जानवी शासन को एक नया झटका लगा है। साथ ही कायम रिजवी,
जायोनी समाज में पाए जाने वाले आंतरिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। नेतन्याहू की नीतियों के विरोध में व्यापक जन प्रदर्शन के बाद अब अवैध जायोनी शासन को एक नया झटका लगा है। तेल अवीव में होने वाली कल की गंभीर झड़पें जायोनी शासन में एक अन्य प्रकार के आंतरिक मतभेद को उजागर करती हैं। इस घटना को अवैध जायोनी शासन के इतिहास की अभूतपूर्व घटना बताया जा रहा है। ये झड़पें अवैध जायोनी शासन के सुरक्षा बलों और अफ्रीकी मूल विशेषकर इरिट्रिया मूल के लोगों के बीच में हुई। इनमें दोनों ओर से लगभग 200 लोग घायल हो गए। एक जायोनी पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैन्य अधिकारी इस प्रकार की झड़प के लिए पहले से तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसी झड़पें तो सामान्यतः जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर ही देखी गई हैं। इसी बीच नेतन्याहू के मंत्रिमंडल ने शनिवार को विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों के निष्कासन का आदेश जारी कर दिया है। तेल अवीव में होने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों के विरोध प्रदर्शन के एक ही दिन के बाद नेतन्याहू ने एक समिति का गठन करके यह आदेश दिया है कि विरोध करने वाले इरिट्रिया मूल के प्रदर्शनकारियों को इसराइल से निकालने के लिए काम शुरू कर दिया जाए। इसी बीच जायोनी शासन के आंतरिक सुरक्षा के मंत्री ने इन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कड़ाई से निपटने की भी बात कही है। उधर बहुत से यहूदी धर्मगुरु अफ्रीकी मूल के यहूदियों को मान्यता नहीं देते हैं। अभी हाल ही में एक वरिष्ठ यहूदी धर्मगुरु ने काले लोगों को बंदर की संज्ञा दी थी। उनके इस वक्तव्य की कड़ी आलोचना हुई और इस पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं, किंतु इस यहूदी धर्मगुरु के विरुद्ध ना तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई और ना ही उसने किसी से माफी मांगी। तेल अवीव में इरिट्रिया के दूतावास के किसी कार्यक्रम के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों ने एक चिंगारी पैदा कर दी है। اس پردرشن میں سوڈانی مول کے لوگوں کی بھاگیداری یہ بتاتی ہے کہ زائونی شاسن میں موجود اشویت سماج کس گھٹن بھرے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ افریقی مول کے یہودیوں کے ساتھ زائونی شاسن کے بھیتر ہونے والے اتیاچاروں کے کارن اس اویدھ شاسن کو کم سے کم 7 بار افریقی مول کے یہودیوں کے ورودھ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شنیوار کو تل اویو میں ہونے والے ورودھ پردرشن اسی کا ایک حصہ تھے۔
تو شوتاو اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکم یہیں پر سماپت ہوا۔
विश्व दर्पण। दोस्तों, विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम लीबिया की विदेश मंत्री की ज़ायोनी विदेश मंत्री से होने वाली मुलाकात और उस पर होने वाले हंगामे पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। इटली में ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्री एली कोहन के साथ लीबिया की विदेश मंत्री नजला अन मनकुश की गुप्त मुलाकात की बातचीत लीक होने के बाद, जिसके परिणाम में उन्हें अपदस्थ भी कर दिया गया, लीबियाई नागरिकों में आक्रोश पैदा हो गया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली और अन्य शहरों की जनता ने सड़कों पर निकलकर इटली में ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्री एली कोहन के साथ लीबिया की विदेश मंत्री नजला अल मनकुश की मुलाकात के खिलाफ प्रदर्शन किया और अतिगणकारी ज़ायोनी शासन के साथ लीबिया के किसी प्रकार के संबंधों को सामान्य बनाने की कड़े शब्दों में निंदा की। लीबिया के प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए फिलिस्तीन की मजलूम जनता के समर्थन को दोहराया। लीबिया के शहर ज़वारात की जनता ने भी सड़कों पर निकलकर टायर जलाए और मुख्य रास्तों को बंद कर दिया। लीबिया के विभिन्न गुटों और हस्तियों ने उक्त मुलाकात की निंदा करते हुए अतिगणकारी ज़ायोनी शासन का झंडा जलाया। दूसरी ओर लीबिया की संसद ने एक बयान में इस संबंध में प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद तबीबा से स्पष्टीकरण मांगा है। लीबिया की संसद के बयान में सड़कों पर निकलने वाली लीबियाई जनता और इसी तरह ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य करने के विरोधियों की सराहना की गई है। इस बयान में इसी तरह कहा गया है कि प्रधानमंत्री तबीबा के मंत्रिमंडल से जनता का विश्वास उठना एक स्वाभाविक और कानूनी हक है। लीबिया की संसद ने ज़ायोनी शासन के साथ प्रधानमंत्री तबीबा सरकार के संबंधों के बारे में अटॉर्नी जनरल की सतह पर जांच का आदेश दिए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसी मध्य मीडिया सूत्रों ने दावा किया है कि लीबिया की विदेश मंत्री, जो तुर्की फरार कर गई थी, अब वो इस्तांबुल से लंदन के लिए रवाना हो गई हैं। लीबिया की विदेश मंत्री की ज़ायोनी विदेश मंत्री से मुलाकात की बात लीक होने पर बाइडेन प्रशासन ने भी नाराजगी व्यक्त की है। लीबिया में गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री तबीबा ने भी त्रिपोली में फिलिस्तीन के दूतावास का दौरा किया और कहा कि वो रोम में लीबिया की विदेश मंत्री और ज़ायोनी विदेश मंत्री की मुलाकात के विषय से अनभिज्ञ थे। इसके साथ ही उन्होंने ज़ायोनी शासन के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को बहाल न करने की पॉलिसी पर भी जोर दिया। लीबिया के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में बल दिया कि लीबिया अरब और मुस्लिम राष्ट्रों के संबंध में, जिनमें फिलिस्तीनी राष्ट्र और फिलिस्तीनी मुद्दा
सर्वोपरि है, अपने राष्ट्रीय नजरिए पर बाकी है। लीबिया के विदेश मंत्रालय के ऐलान के मुताबिक इटली में जानी विदेश मंत्री से मुलाकात एक गैर सरकारी मुलाकात थी जिसकी पहले से कोई योजना नहीं थी। यह मुलाकात इटली के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के मौके पर हुई। लीबिया की विदेश मंत्री नजला अल मनकूश और जायनी विदेश मंत्री एलियल कोहन की गुप्त मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी? यह जरूरत लीबिया की थी, इसराइल की थी, अमरीका की थी या यूरोपीय देशों की थी? सुनिए विचार कराची के प्रसिद्ध टीकाकार राशिद अहद के।
असल मसला यह है कि मशरिक़ वुस्ता में जो इसराइल और अमेरिका की नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो चलाया गया था इसराइल और अमेरिका की तरफ से, वो टोटली फेलियर की तरफ जा रहा है। अब लीबिया के जरिए जो कि एक बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है, कोई स्टेबल पॉलिटिकल सियासी सूरत हाल नहीं है वहाँ, तो ऐसे मुल्क के जरिए उन्होंने कोशिश की कि फिर से ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जमीना हमवार किया जाए। जहाँ पिछले संडे यानी 27 अगस्त को जो क्या कहते हैं इसराइल की वजह के खारजा ने ये अनाउंसमेंट किया कि इसराइल के जो एली कोहेन है फॉरेन मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं अलमनकूश जो लीबिया की नजला अलमनकूश, वो लीबिया की वजीर खारजा के साथ उन्होंने गुफ्तगू की हुई और ये वो मीडिया को भी उन्होंने ये किया। तो और यानी कि दिलचस्प बात तो यह है कि इस मुलाकात के मुतालिक नेतन्याहू ने भी कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है, और फिर लीबिया के जो वजीर आजम हैं उन्होंने भी ये भी कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। एक अजीब वो है कि एक कंफ्यूजन का ये रुकना शिकार है। इसीलिए मैंने देखा कि बाद मुबस्सरीन ने जो अपनी राय दी है कि वो दरअसल क्या कहते हैं ये दोनों जो यानी मशरिकी हिस्से के जो हफ्तर हैं बिन कासिम अल हफ्तर वो और क्या कहते हैं अब्दुल हमीद क्या जदाबी ये जो दोनों ने मिल करके स्केप गोट बनाया है वहां की फॉरेन मिनिस्टर यानी नजला मनकूश को, एक क्या कहते हैं कुर्बानी का बकरा बनाया है।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
जैनी विदेश मंत्री से लीबिया की विदेश मंत्री की मुलाकात की बात जैसे ही लीक हुई लीबिया की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। तो क्या ये गुस्सा उन सरकारों के लिए जैसे मोरक्को या सूडान है जिन्होंने इसराइल से संबंध बहाल कर रखे हैं, क्या संदेश जाता है? विचार सुनिए टीकाकार गुलशन अब्बास नकवी के।
खुद इन्हीं ममालिक में जिन्होंने सहूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बरकरार किए हैं, कायम किए हैं, ओपन किए हैं, यानी दूसरे भी हम देखते हैं कि सहूनी हुकूमत जो है वो खुफिया तौर पर लगी रहती है मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने के लिए। तो शुरू में तो खुफिया तौर पर ही होते हैं, सारे उनके डायलाग जो होते हैं खुफिया होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर खुलकर सामने आते हैं, और तब तक के लिए वो दूसरे बहुत सारे काम करते हैं, राया अम्मा को हमवार करते हैं। चूँकि जैसा कि आपने भी इशारा फरमाया कि लीबिया की अवाम भी और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं سب کے عوام جو ہیں وہ مخالف ہیں صہیونی حکومت کے، اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے بھی مخالف ہیں، لیکن مسلم امہ جو ہے من حیث المجموع اور من حیث المسلم امہ اسلامی امت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی مسلم کنٹری میں ہو، حتیٰ غیر مسلم کنٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں پر موجود ہیں تو ان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک صہیونی حکومت کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ قائم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ لیبیا میں ہم نے دیکھا کہ جب خبر پھیلی، اور خبر یہ دی تھی صہیونی وزیر خارجہ کی طرف سے، اس خبر کا اعلان کیا گیا تھا ایلی کوہن کی طرف سے کہ میں نے خفیہ جو ہے مذاکرات کے ہمارے ہوئے ہیں لیبیا کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ روم میں، تو جیسے ہی یہ خبر منظر عام پر آئی اور لیبیا کے عوام کو پتہ چلا اس خبر کا، تو انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے اور مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، انہوں نے فلسطینی عوام کی حق میں نعرے لگائے، اور یہاں تک کہا کہ ہماری جانیں اور ہمارا خون جو ہے وہ قربان ہے فلسطین کے لیے، صہیونی حکومت کا پرچم تک انہوں نے جلا ڈالا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے صہیونی حکومت کے مظالم امت اسلامیہ کے سامنے آتے ہیں تو امت اسلامیہ اسی طرح کا مظاہرہ کرتی ہے، اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کرتی ہے، اور بارہا صہیونی حکومت کا پرچم مختلف ممالک میں اور مختلف لوگوں نے، مختلف اسلامی گروہوں نے جلا کر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔
यद्यपि लीबिया की सरकार और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये अनाधिकारिक मुलाकात थी, ये भी कहा कि इसके पहले कोई योजना नहीं थी। इन तमाम सफाइयों और स्पष्टीकरण के बावजूद बाइडेन प्रशासन ने नाराजगी व्यक्त की है कि इस खुफिया मुलाकात का पर्दा क्यों फाश किया गया। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जब लीबिया सरकार को इसकी सूचना नहीं थी तो बाइडेन प्रशासन को इस पर नाराज होने की क्या जरूरत है। विचार सुनिए पाकिस्तान के टीकाकार राशिद अहद के।
एक तो ये एक दूसरे से क्या कहते हैं इख्तलाफ का इजहार करके यानी मुस्लिम दुनिया को कंफ्यूज करते हैं आवाम को। पहली बात तो ये कि जाहिर है कि अमरीका ये महसूस कर रहा होगा कि अभी ये मसलहत नहीं थी कि अभी इस अभी प्रोजेक्ट उनका जो मनसूबा मुकम्मल करना था कि क्या करना है उस सवाल से उनकी तकमील नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि वजीर आजम अब्दुल हमीद बबीदर को क्या कहते हैं बिल्कुल सलाह नहीं थी, ये तो एक नामुमकिन सी बात है कि जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो टॉप डिप्लोमेट होता है, वो कैसे वजीर आजम को इतला दिए बगैर वहां की वजीर आजम यानी इसराइल के वजीर आजम से मुलाकात कर सकता है, और वो भी जबकि इटली यानी वजीर खारजा ने इसकी मेजबानी की, इतनी इतना अहम इवेंट कैसे रह सकता है। तो ये आवाम के गैज वगर से बचने के लिए हुकूमत ऐसा कर रही। तो ये जो अमरीका जो प्लानिंग कर रहा था वो दरअसल जो राइसी कास्ट की एक रिसेंटी की जो पॉलिसी चल रही है पूरे आलम इस्लाम में के शहीद हों, इसराइल के खिलाफ मुस्तैद हों, और इतना प्रेशर लीबिया के आवाम का खुद गवर्नमेंट ने कबूल किया कि उसने मजम्मत की इस यानी कि इस तरह की खुफिया मुलाकात की, और फिर जो है ये बाजाबता फलस्तीनियों के कौंसुलेट में जाकर के उनकी हिमायत का ऐलान किया, इतना प्रेशर आवाम का।
दोस्तों कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
वहाबियत और वास्तविकता।
दोस्तों, कार्यक्रम वहाबियत और वास्तविकता की एक अन्य कड़ी के साथ उपस्थित हैं कायम रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने वहाबी और तकफीरी आतंकी विचारधारा की समानताओं के बारे में चर्चा की थी। अब से हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों भ्रष्ट विचारधाराओं के बीच संपर्क कैसे पैदा हुआ। इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे की ओर जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व पर वर्चस्व के लिए अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई थी। जापान के नगरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के 4 वर्षों के बाद पूर्व सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
इस घटना के बाद से अमेरिका ने पूर्व सोवियत संघ के साथ सीधे तरीके से न टकराने की नीति अपनाई। हालांकि ये विषय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संघर्ष के समाप्त होने के अर्थ में बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे महायुद्ध में अमेरिका का काफी पैसा खर्च हो चुका था, इसीलिए आर्थिक दृष्टि से उसकी हालत अच्छी नहीं थी। यही कारण है कि उसने सोवियत संघ से सीधे तौर पर टकराने की बात अपने मन से निकाल दी थी, किंतु उसने सोवियत संघ का पीछा नहीं छोड़ा था। अब अमेरिका ने पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान रूस के युद्ध के लिए दूसरे देशों और उनके पैसों को प्रयोग करने की शैली अपनाई, जिसको प्रॉक्सी वार भी कहते हैं।
मध्य पूर्व पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सोवियत संघ अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों को सत्ता तक पहुंचाने के प्रयास में लगा हुआ था। वह इस देश में कम्युनिस्ट विचारधारा के अधिक से अधिक समर्थक पैदा करना चाहता था। हालांकि ये बात अफगानिस्तान की जनता के गले से बिल्कुल नहीं उतर रही थी। अमेरिका को तो पूरी तरह से पता था कि वह सोवियत संघ के साथ सीधे तरीके से युद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अफगानिस्तान में अपनी दृष्टिगत सरकार को समर्थन देने के उद्देश्य से वहां पर लाल सेना को भेजा।
इस घटना से ठीक एक साल पहले अर्थात सन 1979 में ईरान में स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति सफल हुई थी। इससे मुसलमान राष्ट्रों के बीच एक नई जान आ गई थी। इस बात से अफगानिस्तान में कम्युनिज्म विरोधी लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई। उस दौरान अफगानिस्तान में 2 नेता सामने आए, बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद। उन्होंने अफगानिस्तान की जनता का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। बुरहानुद्दीन बाद में कुछ समय के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने इस्लामी गणतंत्र ईरान की यात्रा भी की।
अपनी यात्रा के दौरान रब्बानी ने अफगानिस्तान के लिए इस्लामी क्रांति को आदर्श बताया था। बुरहानुद्दीन रब्बानी का कहना था कि हम भी ईरान के इस नारे का समर्थन करते हैं कि हम न तो पूरब के साथ हैं और न ही पश्चिम के साथ, हम स्वतंत्र हैं। अफगानिस्तान में निहत्ती जनता ने जिस शक्ति के साथ सोवियत संघ का विरोध किया, उसको देखते हुए अमेरिका को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे इन लोगों ने एक सशस्त्र सेना का डटकर मुकाबला किया। इसको देखते हुए अमेरिका ने इस जन विद्रोह को अपने हित में प्रयोग करने की योजना बनाई, ताकि एक तीर से कई निशाने साधे जा सके। इस काम के लिए अमेरिका ने बड़े बड़े झूठ बोले।
उस समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान की जनता को विश्व के शत्रु के रूप में पेश कर रहे थे, उन्होंने ईरान के विरुद्ध संघर्ष के लिए विश्व के 80 देशों का आह्वान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के संघर्षकर्ताओं को आज़ादी के मार्ग में संघर्ष करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग अकेले नहीं हैं, अमेरिका आपके साथ है। हम हर प्रकार से आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। युद्ध करना और अपने अधिकार लेना आपका अधिकार है। अमेरिका ये सब उसी नीति के अंतर्गत कर रहा था जिसको डिवाइड एंड रूल के नाम से जाना जाता है।
अफगानिस्तान में सोवियत संघ के विरुद्ध संघर्षरत लोगों को देखकर अमेरिका को यह बात समझ में आ गई कि इस समय प्रॉक्सी वार भी उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसी के साथ उनको इस्लामी क्रांति की विचारधारा के अन्य देशों और क्षेत्रों में फैलने को लेकर भी गहरी चिंता थी। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान में किए जाने वाले संघर्ष के समर्थन को अपनी दोनों समस्याओं के समाधान के लिए उचित विकल्प समझा।
अब अमेरिका ने अपनी चालों को किनारे रखते हुए इस समस्या के समाधान के लिए हथियारों के स्थान पर मीडिया को आगे कर दिया। अफगानिस्तान में कम्युनिज्म के विरुद्ध युद्ध पश्चिमी संचार माध्यमों की सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर अब होने लगी थी। पश्चिमी संचार माध्यम इन खबरों को इस प्रकार से पेश करने लगे कि मानो सोवियत संघ ही केवल एक वर्चस्ववादी शक्ति है और इस्लामी देशों को नुकसान पहुंचाने तथा उनका दोहन करने में अमेरिका और ब्रिटेन की कोई भूमिका नहीं है। दशकों तक मुसलमानों का दमन करने के बाद अब वे उनके दिखावे के समर्थन में उतर आए थे।
जिस समय अफगानिस्तान में कम्युनिज्म के विरुद्ध संघर्ष अपने आरंभिक वर्षों में, उसी दौर में सऊदी अरब से अब्दुल्ला यूसुफ अज्जाब नामक एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसके मन में वहां को लेकर कई योजनाएं थीं। अब्दुल अज्जाम एक फिलिस्तीनी था। उसने काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय से इस्लामी शिक्षाओं में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। जिस काल में फिलिस्तीनियों की भूमिका अतिग्रहण किया जा रहा था, उसी काल में यूसुफ अज्जाम ने मुस्लिम ब्रदरहुड में सदस्यता ग्रहण की थी। जब इसराइल ने अरब देशों के विरुद्ध 6 दिवसीय जंग की थी, तो अब्दुल्ला यूसुफ अज्जाम ने उसमें भाग लिया था। उन्होंने इस युद्ध में अरब देशों की कमजोरी को बहुत ही निकट से देखा था।
अब्दुल्ला यूसुफ अज्जाम के मन में ये विचार था कि अफगानिस्तान में एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जाए। जब अफगानिस्तान को सोवियत संघ से आज़ाद करा लिया जाए तो उसके बाद इसी सेना को फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इस बीच अफगानिस्तान में संघर्ष करने वालों के लिए अमेरिका की आर्थिक और हथियारों की सहायता का क्रम जारी रहा। अफगानिस्तान में संघर्ष को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अब्दुल्ला यूसुफ अज्जाम ने एक फतवा दिया और उसका समर्थन हासिल करने के लिए उसने वहाबी मुफ्तियों से सहायता ली, जिनमें सऊदी अरब के मशहूर वहाबी मुफ्ती बिन बाज भी शामिल रहे।
इस फतवे के बाद अफगानिस्तान में कई देशों के मुजाहिद पहुंच चुके थे, जो कम्युनिज्म के विरुद्ध लड़ाई में आगे आगे थे। अब जरूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विभिन्न संस्कृतियों और समाजों से आने वाले मुजाहिदों के बीच संपर्क बनाए, उनको मुख्य लक्ष्यों को समझाए और उनके लिए एक संयुक्त जीवन शैली की योजना पेश करे। लेकिन यहां पर शर्त यह थी कि उस योजना का मूल सिद्धांत वहाबी विचारधारा पर ही आधारित होना चाहिए। इन मुजाहिदों के बीच एकता पैदा करने के लिए अमेरिका के निकट वहाबी विचारधारा से अच्छी कोई विचारधारा नहीं थी।
सऊदी अरब से अमेरिका के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। इराक के विरुद्ध युद्ध में सऊदी अरब ने खुलकर अमेरिका का समर्थन किया था। ज़ायोनियों द्वारा फिलिस्तीनियों की भूमि का अतिग्रहण कराने में भी सऊदी अरब की भूमिका कोई ढकी छिपी बात नहीं है। जब अमेरिका ने अपने काम के लिए सऊदी अरब का चयन किया तो अफगानिस्तान से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी बिन लादेन परिवार को दे दी गई थी।
ओसामा बिन लादेन का पिता मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन यमन के निकटवर्ती क्षेत्र में रहता था। सऊदी शाही परिवार की सहायता से वह एक छोटे से ट्रांसपोर्टर से भवन निर्माण करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बन बैठा था। सऊदी अरब के शाही परिवार से निकटता के कारण मोहम्मद बिन औद बिन लादेन के परिवार के सदस्यों के शाही परिवार के लोगों के साथ निकट के संबंध हो चुके थे। अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन मोहम्मद बिन औद बिन लादेन का 17वां बेटा था, जो उसका सबसे छोटा बेटा था।
ओसामा बिन लादेन का भी सऊदी अरब के शाही परिवार के साथ उठना बैठना रहता था। सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख तुर्की फैसल के साथ बिन लादेन का याराना था। दोनों की बैठकें हुआ करती थीं। सऊदी अरब के गुप्तचर विभाग के पूर्व प्रमुख के साथ ओसामा बिन लादेन की निकटता के कारण इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की उस पर कृपा रहती थी। सन 1979 में ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब के अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी।
ये वही जमाना था जब अब्दुल्ला यूसुफ अज़्ज़ाम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। हालांकि उन्होंने केवल एक साल ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, किंतु इसी दौरान ओसामा बिन लादेन से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। सऊदी अरब की इस यूनिवर्सिटी में मुलाकात के बाद ओसामा बिन लादेन और यूसुफ अज़्ज़ाम के बीच पाकिस्तान में मुलाकात हुई। उस काल में सोवियत संघ के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विश्व के देशों से लोग पहले पाकिस्तान पहुंचा करते थे, उसके बाद में अफगानिस्तान भेजे जाते थे। आरंभ में ओसामा बिन लादेन की जिम्मेदारी ये थी कि अमेरिका की ओर से भेजे जाने वाले पैसे और हथियारों को वह अफगानिस्तान पहुंचाए।
बिन लादेन अपने इस काम में लगा रहता था, किंतु इसी बीच अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से उसका मनमुटाव हो गया। इस मनमुटाव का कारण यह था कि अब्दुल्ला यूसुफ अज़्ज़ाम अक्सर अहमद शाह मसूद की सराहना किया करते थे, क्योंकि उसकी उनके साथ अच्छी दोस्ती थी। ये बात ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उनका विरोधी हो गया। ओसामा ने अफगानिस्तान में मौजूद अरब मुजाहिदों को एकजुट किया था, फिर वो उनका कमांडर बन गया था। ये मुजाहिदीन अरब अफगान के नाम से मशहूर हुए।
एक बार सोवियत संघ ने ओसामा बिन लादेन वाले मुजाहिदों पर हमला कर दिया, किंतु ओसामा के साथियों ने उनको विफल बना दिया। इस घटना के बाद अब ओसामा बिन लादेनों को पैसे और हथियारों के संयोजक के स्थान पर कमांडर बना दिया गया। सन 1988 में जब अफगानिस्तान में संघर्षरत मुजाहिदों ने सोवियत संघ की सेना को परास्त कर दिया, तो अज़्ज़ाम ने कहा कि अरब अफगानों की सेना को अब फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए चलना चाहिए। ओसामा बिन लादेन ने का विरोध किया। ओसामा बिन लादेन का कहना था कि अब मुजाहिदों को इस्लाम के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए।
बहरहाल ओसामा बिन लादेन और अज़्ज़ाम के बीच मतभेद बढ़ते गए। अंततः एक आतंकवादी कार्रवाई में अब्दुल्ला अज़्ज़ाम अपने दो बेटों के साथ मारे गए। इस घटना के बाद ओसामा बिन लादेन अरब अफगानिस्तान मुजाहिदों के बीच एकमात्र कमांडर बाकी रह गया। अब अरब अफगान मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन के आदेश पर आतंकी कार्रवाइयां किया करते थे। उनको जब भी ओसामा बिन लादेन से आदेश मिलता, वे उसी हिसाब से आतंकी कार्रवाइयां करते। इसी प्रकार की कार्रवाइयों के ही कारण अलकायदा नामक आतंकवादी गुट के गठन की भूमिका प्रशस्त हुई थी। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति चाहते हैं। Oh,